हरे 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 कृष्णा। प्रिय पंचशील भक्तवृंद, दामोदर देशवंत भक्तवृंद, फेसबुक के भाग्यशाली भक्तों, भागवत के प्रार्थनाओं में तीसरे अध्याय दसम स्कंद में देवकी माता भगवान श्री कृष्ण के चतुर्भुज रूप में अद्भुत प्रकट्य के ऊपर प्रार्थना का पहला श्लोक कल हमने पढ़ा था। रूपम यत् तत् प्राहुर अव्यक्तम आद्यम। भगवान जो आपका रूप है ये इंद्रियों से परे है, अव्यक्त है, ये आदि है, इसका मतलब इसका जन्म नहीं है, ये सबका कारण है, ये साक्षात ब्रह्म है, ये ज्योति, ये प्रकाशमय है, ये प्रकृति के गुणों से परे है और निर्विकार है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, ये केवल सत्ता मात्र है, सब कुछ इसी के ऊपर आश्रित है, निर्विशेष, इसमें कोई भौतिक विशेषता नहीं है, निर्हितम, इसको कोई इच्छा नहीं है, ये आत्माराम है, परिपूर्ण है। सत्वम साक्षात विष्णु, और आप वो विष्णु साक्षात हो जो आध्यात्मिक दीप हो, अपने आप में प्रकाशित हो। इसका हमने श्री प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ा था, चक्रवर्ती पाद के तात्पर्य के भाव को देख रहे थे। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, भगवान भगवान के पार्षद, भगवान के भक्त, भगवान का धाम और भगवान का रूप, ये सब विशुद्ध सत्व का जो विलास है, ये कोई भौतिक चीज नहीं है, इसका मतलब आप निर्विशेष हैं, ये सब चीजें निर्विशेष हैं क्योंकि इसके अंदर कोई भौतिक विशेषता नहीं है। और निर्हितम का मतलब है आपको कोई भौतिक कामना नहीं है क्योंकि आप अपने आप में परिपूर्ण है, परम सिद्ध हैं। अथवा इसका एक अर्थ और ये हो सकता है कि आप भक्तों की भी भौतिक इच्छाओं को हर लेते हो और उनके हृदय में भगवान आपके प्राप्त करने की इच्छा को उत्पन्न कर देते हो, इसलिए निरारी का ये भी एक अर्थ है। यह शब्द जो है निर का मतलब नहीं, और यह जो शब्द है उसका अर्थ इच्छा भी है, उसका अर्थ चेष्टा भी है, उसका अर्थ प्यास, प्यास का मतलब किसी चीज को पाने की तृष्णा भी है, और ऐसे ये अर्थ निरीय शब्द के हैं। आप विष्णु हो, आध्यात्मिक दीप हो का मतलब सब सत्य को आप ही प्रकाशित करते हो। मैं तो बुद्धिमान नहीं हूं, माता देवकी कहती है, मैं तो अज्ञ हूं, अज्ञानी हूं, जितना आपने मुझे बुद्धि दी और जो आपने मेरे हृदय में प्रकाशित किया उसका मैंने वर्णन किया। श्री जीव गोस्वामी का बहुत लंबा तात्पर्य है, सारे दर्शन क्या कहते हैं उसका खंडन किया हुआ है इस श्लोक में। तो विशेष इसका अर्थ ये श्लोक का, अगर हम सब चीजों का विश्लेषण करें तो ये सारा जगत क्या है, बोला ये भगवान आपका ही विलास है, ये सब ब्रह्म है। तो फिर इसमें गुण क्यों है, आप तो साक्षात विष्णु हो, आप माया से परे हो, परंतु आप में छह गुण तो हैं, षडगुण संपन्न भगवान हो, आप अति दयालु हो, आपके अपने श्री अंग हैं और आपके श्री विग्रह के विशेष बड़े चेष्टाएं हैं, हाथ हैं, पांव हैं, आप तो सद्गुणों का खजाना हो, और भगवान के इन गुणों का वर्णन किसी को विस्तार से देखना है तो जीव गोस्वामी पाद लिखते हैं, भागवत संदर्भ में देखा जा सकता है रामानुजाचार्य ने कैसे वर्णन किया है। सत्ता का अर्थ है, सत्ता मात्र का अर्थ है आपके विशेष गुण, परम सत्य के विशेष गुण, सत्ता का ये भाव है। और ज्योति का अर्थ है अपने आप प्रकाश होने वाला चेतन, और ब्रह्म का अर्थ है महान, आद्यम का अर्थ है जन्म रहित। यही भगवान का रूप ज्ञानी जो नेति नेति करते हैं उनको नकारात्मक रूप से मिलता है, क्योंकि वो भौतिक दृष्टि से देखते हैं। परंतु आप तो विष्णु हैं, आपका जो रूप है इसमें कोई भौतिक गुण नहीं है। देवकी के गर्भ से प्रकट होकर आप अजन्मा हो, ये तो वेद में वर्णन है, परंतु आपने जन्म लेके इसको भी निराकरण कर दिया। और निर्गुण कहते हैं फिर भगवान इतने सारे सुंदर वस्त्र आभूषणों के साथ, मुकुट और किरीट कुंडल के साथ प्रकट हुए, तो ये भी खंडन हो गया उनका कि भगवान में कोई गुण नहीं है, इतने सारे सुंदर गुणों के साथ प्रकट हुए हैं। और इस श्लोक में विष्णु का अर्थ है सर्वव्यापक, और यशोदा आदि ने भगवान को अंदर बाहर सर्वत्र कहा है। अध्यात्म दीप आप अपने आप से प्रकाशित करते हैं और दूसरों को भी प्रकाशित करते हैं, आप हमारी बुद्धि को प्रकाशित करते हैं। अध्यात्म का मतलब जो भगवान के ऊपर आश्रित है, अधि अधि भगवान, आत्म आत्म भगवान, अधि जिसके ऊपर आश्रित है। आत्मा राम जो है उनको भी आप आकर्षित करते हो, इसलिए ब्रह्म से आपका रूप महान है, वो साक्षात शब्द से इस श्लोक में वर्णित किया गया है। एक और अर्थ इस श्लोक का है, भगवान विष्णु के रूप को अव्यक्त निर्गुण और परब्रह्म कहा जाता है, और वो आप हैं, आप अपनी सगारी शक्तियों से सर्वत्र प्रविष्ट है। विष्णु का यही अर्थ है, अध्यात्म दीप का मतलब है परम आत्मा। और आगे का आज श्लोक 25वां पढ़ रहे हैं। नष्टे लोके दिवि प्रारधावसाने महाभूतिष्वादिभूतं गतेषु व्यक्ते अव्यक्तं कालवेगेन याते भवान एक शिष्यते अशेष संज्ञः। नष्टे लोके दिवि प्रारध अवसाने, दिवि प्रारध अवसाने का मतलब ब्रह्मा जी की आयु, ब्रह्मा जी की आयु को कहते हैं द्विप्रारब्ध, प्रारध द्विप्रारध अवसाने का मतलब समय, और वो होता है 1000 बार युग बदलते हैं, ये ब्रह्मा जी का एक दिन है, और ऐसे ब्रह्मा जी के 100 साल बीतते हैं उसको कहते हैं द्विप्रारब्ध। उस समय जब ब्रह्मा जी का 100 साल पूरे होते हैं और महाप्रलय होते हैं होती है, तो महाभूतेषु ये 5 भूत पृथ्वी जल आकाश वायु अग्नि आदि भूतम गतेषु, ये सारे अहंकार में प्रवेश होते हैं, अहंकार महतत्व में प्रवेश होता है। व्यक्तम अव्यक्तम, महतत्व प्रधान अव्यक्त में प्रविष्ट होता है। काले वेगेन याते, ये सब होता है काल के वेग से, तो काल ये सारा कार्य करता है सृष्टि के संहार का। भवान भगवान आप एक शिष्य थे, आप एक ही बाकी बचते हैं, ये सब आप में समा जाते हैं, ये नष्ट हो जाते हैं, भौतिक सृष्टि नष्ट हो जाती है ब्रह्मा जी के 100 साल के उपरांत, परंतु आप रह, और कैसे नष्ट होती है, काल के माध्यम से नष्ट होती है, परंतु आप शेष बचते हैं, अकेले बचते हैं, इसलिए आपको अशेष कहते हैं। तो शिष्यते अशेष संज्ञा, तो आप शेष बचते हैं। प्रभुपाद जी ने इसका भाव लिखा है, सहस्र युगों के बाद, कई युगों के, अनंत युगों के बाद, जब महाप्रलय का समय ब्रह्मा जी के 100 साल पूरे होते हैं, तो जितना भी व्यक्त जगत है जो दिखता है वो अव्यक्त में प्रविष्ट हो जाता है काल के वेग से, प्रवाह से, काल के शक्ति से। 5 भूत सूक्ष्म अहंकार में अहंकार, महत्तत्व में महत्तत्व, प्रधान में और प्रधान भगवान में। आप केवल एक उस समय रहते हैं, इसलिए आपको अनंत शेष नाग प्रभुपाद ने लिखा है। शेष का मतलब जो बाकी बचता है, तो भगवान शेष तो बचते ही हैं। और प्रभुपाद ने लिखा है कि महाप्रलय के समय पांच भूत अहंकार में लीन होते हैं और अहंकार, फिर यहां लिखा है आध्यात्मिक शक्ति भगवान में लीन होता है, परंतु और नीचे लंबा देखेंगे तो महत्तत्व और महत्तत्व प्रधान और प्रधान भगवान में। तो बाकी जो बचता है उसको शेष कहते हैं, आदि पुरुष कहते हैं, और भी बहुत से नाम है। देवकी भगवान को प्रार्थना कर रही है कि ब्रह्मा जी की आयु के उपरांत महाप्रलय के समय, जब ये भौर सारा भौतिक अनंत कोटि ब्रह्मांड प्रलय इनकी होती है, तो ये पांच तत्व महत्तत्व में प्रवेश करते हैं, महत्तत्व काल के प्रभाव से प्रधान में प्रवेश करता है, और प्रधान जो है आप में भगवान प्रवेश करता है। इसलिए ये पूरी भौतिक सृष्टि समाप्त हो जाती है, परंतु आप अपने नाम गुण रूप लीला और अन्य सारे जो आपकी सामग्री है उसके साथ बचते हैं, इसलिए आपको शेष कहते हैं। मैं आपके चरण कमलों में प्रणाम करती हूं, माता देवकी कहती है, आप इस सारे जगत के निर्देशक हो, और ये जगत काल के प्रभाव से कार्य करता है, और काल जो है वो क्षण से लेके वर्ष में परिवर्तन, क्षण से दिन में रात में सप्ताह में महीना में साल में परिवर्तन होता है, ये सब आपके निर्देश से कार्य करता है। इन सब के निर्देशक आप हो और सारी शक्तियों के आगार भी आप हो। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, जो महाप्रलय के समय विनिष्ट नहीं होता, नाश नहीं होता, तो फिर भय की क्या बात है? जब महाप्रलय ही जिसका नाश नहीं करती है भगवान, वो आप हैं, तो फिर आपका कौन अनिष्ट कर सकता है, कौन आपका नाश कर सकता है? भगवान, भगवान के पार्षद, भगवान के वस्त्र, भगवान की सारी सामग्री, ये सब नित्य है, ये सदा रहती है, इसलिए इसको शेष कहते हैं। ये अवशेष बचती है, इसलिए शेष नाम से इनको कहा गया है। सबको नाश कौन करता है? बोला काल। रहता कौन है? आप एकमात्र। और वैकुंठ रहता है, आध्यात्मिक जगत रहता है, क्योंकि वो भगवान से अभिन्न है। भगवान और भगवान के धाम में अंतर नहीं है, जैसे भगवान और भगवान के नाम में अंतर नहीं है, ऐसे भगवान और भगवान के धाम में भी अंतर नहीं है। और जो भी भगवान की सेवा की सामग्री है वो भी नित्य शाश्वत। असल में ये सब शेष से, ये सब शेष का विस्तार है, अनंत शेष भगवान का विस्तार है, इसलिए प्रभुपाद ने उसको शेष शब्द लिखा है। अनंत शेष जो भगवान का एक विस्तार है, बलराम जी का, बलराम जी का एक विस्तार अनंत शेष है, और सारी भगवान के वस्त्र आभूषण से लेके धाम से लेकर जो सामग्री भगवान की सेवा में लगती है वो सब से अनंत शेष का ही विस्तार है, और वो सब शेष शेष ही रहता है प्रलय के उपरांत। अशेष का मतलब सब कुछ, और इसका मतलब जो प्रलय के बाद रहता है उसको शेष कहते हैं। कितने प्रकार की प्रलय है, ऐसा प्रश्न पूछा गया है तीसरे स्कंद के सातवें अध्याय में, और क्या बचता है भगवान प्रलय के उपरांत। तो उसका उत्तर दिया हुआ है, कोई भी भौतिक जगत में जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त नहीं है, परंतु आपके प्रकट होने से भगवान भय भाग गया, मृत्यु पलायन कर गया, जीवों ने आपके चरण का शरण लिया है, अब बड़ी शांति के साथ सो रहे हैं आपकी कृपा से। प्रलय हो फिर भी आप अपने पार्षदों के साथ अपनी लीला करते रहते हैं, आपके ऊपर प्रलय का प्रभाव नहीं पड़ता है। समय सबको नाश करता है, तो क्या समय स्वतंत्र है क्या? तो आगे वाले श्लोक में समय भी आपके अधीन है ये कहा जाएगा। यथेष्ट विन्योगार्थम शेष शब्देन कथ्यते, जो भगवान की सेवा में चीजें लगती हैं उसको शेष कहा जाता है, क्योंकि वो शेष का विस्तार है। अब काल की बात हो रही है। यो अयम कालस्तस्यते अव्यक्त बंधो चेष्टाम आहोश चेष्टते येन विश्वम निमिषाधिरः वत्स्रांतो महियांस तम तवे शानम क्षेम धाम प्रपद्ये। यो अयम काल, जिसको ये काल कहते हैं, जो प्रलय का कारण है, जिसके वेग से प्रलय होती है, तस्य ते, उसको भगवान आप अव्यक्त बंधु, भगवान को अव्यक्त बंधु कहते हैं। अव्यक्त है प्रधान, जिससे होती है भौतिक सृष्टि, उसका है बंधु, इसका मतलब भगवान के चलाने से वो चलता है, भगवान की दृष्टि से चलता है, इसलिए भगवान को प्रधान को चलाने वाले के कारण बंधु का है। चेष्टा आहुस चेष्टते येन विश्वम, और आप उसकी शुरुआत करते हैं, आपकी दृष्टि पड़ती है तो वो अपने आप काल का चक्कर चलने लगता है। काल का चक्कर आपकी प्रेरणा से चलता है और ये विश्व बनता है और चलता है और इसका संहार भी होता है। और वो काल क्या है? बोला निमिष आधी है, आंख झपकने तक से काल शुरू होता है, वत्सर अंत और वर्ष तक वो जाता है। महियांस तम तवेशानाम क्षेम धाम प्रपद्यते, और ये काल बड़ा शक्तिशाली है, परंतु हे भगवान आप त्वा ईशानाम, परंतु इसके आप स्वामी हैं। ईश्वर शब्द का अर्थ है समर्थ, समर्थ, स्वामी, शक्तिशाली, शासक। और क्षेम धाम का मतलब आप सबका कल्याण करने वाले हैं, इसलिए हम आपका शरण लेती हैं, माता जी कह रही हैं, देवकी माता जी। भौतिक प्रकृति को प्रेरणा देके सृष्टि का शुभारंभ करने वाले, इस अद्भुत सृष्टि के कार्य को जो काल चक्कर से चलाया गया है, और वो काल चक्कर जिसमें सेकंड है, मिनट है, घंटे हैं, दिन है, रात है, सप्ताह है, महीना है, साल है, और ये काल अनंत कोटि युगों तक चलता है, परंतु है क्या? ये आपका एक रूप है भगवान, आपकी लीला के लिए इस काल को आप वश में रखते हैं, इसके आप स्वामी हैं, वो आपका सेवक है, आप ईश्वर हैं काल के, और आप सबका मंगल करने वाले हैं, इसलिए हम देवकी माता जी कहते हैं पूर्ण रूप से आपके चरणों का शरण लेती हूं। श्री प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं काल चलता है सूर्य से, दिन रात ये सब सूर्य से चलता है, तो सूर्य काल को चलाने वाला अगर माना जाए, दिन रात की बात करें, तो तो ब्रह्मा संहिता लिखते यचक्षुरे सविता सकल गृहाणाम राजा समस्त सुरमूर्ति अशेष तेजा यस्याज्ञा भ्रमति संभ्रम काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। भगवान श्री कृष्ण गोविंद का शरण लेता हूँ, उसका भजन करता हूँ, जिसकी आज्ञा से काल चक्र चलता है और सूर्य जो भगवान का आंख के समान आंख है जो सारे ग्रहों का राजा है और उसी के कारण ये दिन रात आदि होते हैं। भले भौतिक जगत इतना बड़ा महान विस्तृत और वंडरफुल है, अति विस्मय में डालने वाला है, परंतु काल के अधीन है और काल भगवान के अधीन है। भगवद गीता में मयाधीक्षेण प्रकृति सूयते से चराचरम, ये जगत काल से चलता है और काल मेरे आदेश से चलता है। काल के ऊपर कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता, परंतु काल भगवान के अधीन है। तो फिर भगवान को काल का क्या भय? और काल का एक अर्थ मृत्यु भी है, काल का अर्थ समय भी है, काल का अर्थ मृत्यु भी है। तो काल है ही भगवान का सेवक, भगवान के अधीन, तो भगवान का क्या बिगाड़ेगा। तो काल सूर्य के गणना से होता है, फिर उसमें निमिष होती है, पल होता है, ये बहुत बड़ी लंबी चौड़ी इसकी गणना है भाई। वैदिक गणना में, अंग्रेजी गणना में प्रभुपाद ने लिखा है कि सेकंड है, मिनट्स हैं, और फिर घंटे हैं, दिन है, रात है, सप्ताह है, ऐसे साल है, ये सब सूर्य के भ्रमण के चक्कर से होते हैं। परंतु सूर्य भी तो स्वतंत्र नहीं है, वो काल के अधीन है। भ्रमते सम ब्रह्म काल चक्रे, ये सूर्य का भ्रमण काल के आदेश से होता है। और सूर्य काल के कंट्रोल में है और काल कृष्ण के कंट्रोल में है, इसलिए भगवान को कोई भय नहीं है। यहां भगवान को अव्यक्त बंधु कहा गया है, उसका अर्थ है कि भौतिक सृष्टि के चक्कर को शुभारंभ करने वाले वो हैं। अब प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे हमने कुम्हार के पास चक्का देखा है, जो ऐसे एक बार चक्कर को चलाता है, चक्का फिर अपने आप चलता रहता है, और चक्का चलता दिखता है, कुम्हार बैठा हुआ नहीं दिखता है, लोग बच्चा समझ सकता है ये चक्का कैसे चल रहा है, लेकिन जो चक्कर कुम्हार का है उसको चलाने का पहला काम कुम्हार ने किया। ऐसे ये काल चक्र भगवान चलाते हैं और फिर ये चक्र अपने आप सृष्टि बनाता रहता है। इसलिए सारी सृष्टि के पीछे भगवान है, और भगवान क्योंकि दिखता नहीं है, इसलिए अव्यक्त बंधु कहा गया है। और प्रधान अव्यक्त है, और प्रधान भगवान के दृष्टि से कार्य करता है, इसलिए अव्यक्त बंधु भगवान को कहा गया है। दूसरा ये कारण है, सभी चीजें काल के अधीन है और काल भगवान के अधीन है, इसलिए भगवान काल से परे है। चक्रवर्ती बात कहते हैं 25वें श्लोक में काल के कारण प्रलय होती है, काल के वेग से ये कहा गया, और इस श्लोक में यह समझाया गया कि काल भी स्वतंत्र नहीं है। काल कहां से उत्पन्न होता है, काल का कारण कौन है, काल से किसको भयभीत होना चाहिए। तो चक्रवर्ती बात कह रहे हैं काल भगवान की क्रिया शक्ति है, चेष्टा है, काल भी भगवान की एक शक्ति है, उसको कहते हैं क्रिया शक्ति, बल क्रिया ज्ञान बल क्रिया च, काल भगवान की क्रिया शक्ति है, चेष्टा है, इसलिए भगवान को अव्यक्त बंधु कहा गया है। क्योंकि काल के प्रभाव से ब्रह्मांड की सृष्टि होती है, ये काल क्या है? निमिष है, और निमिष से लेकर वर्ष तक है, और उससे फिर दिन होते हैं, फिर ब्रह्मा का दिन होता है, फिर ब्रह्मा के दो प्रारब्ध का मतलब 100 साल होता है। मैं आपका शरण लेती हूं, क्योंकि काल आपके अधीन है, आप निर्भय हैं, और आप हमको भी निर्भय बनाइए, ये देवकी माता की प्रार्थना का भाव है। काल के प्रभाव का वर्णन तो हुआ, परंतु काल स्वतंत्र नहीं है, भगवान के अधीन है, ये देवकी माता यहां स्थापित कर रही है। और कहती है भगवान का शरण लेने वाले को कोई भय नहीं रहता है। मैं आपका शरण लेती हूं, फिर मेरे को कंस का भय नहीं रहेगा। आप निर्भय हैं, अब मैं आपका शरण लेती हूं, और शरणागत का भय आप नाश करते हैं, और आप क्षेम धाम है, सबका कल्याण करने वाले हैं, आशीर्वाद देने वाले हैं, सुख देने वाले हैं, क्योंकि सारा कल्याण सुख शुभ आपके शरण लेने से प्राप्त होता है, ये माता का भाव है। अब माता आगे प्रार्थना में कह रही है, मर्त्यो मृत्यो व्याल भीत पलायन लोकान सर्वान निर्भयम नाध्यगच्छत नाध्यगच्छत त्वत्पादाब्जं प्राप्य यदरिच्छाद्यः सुस्तः शेते मृत्युस्मात् अपयेति। मर्त्यः जीव जो संसार में आया है, मृत्यु संसार में जीव, उसको कहते हैं मर्त्य। इसका मतलब जो आया है संसार में उसको मरना पड़ेगा, इसलिए उसको कहते हैं मर्त्य। मृत्यु व्याल भीतः, मृत्यु काल रूपी सर्प से भयभीत है। सारे जीव जो भौतिक जगत में आए हैं काल रूपी सर्प से, सांप से, व्याल से, अजगर से भयभीत हैं। तो क्या कर रहे हैं? पलायन, इधर से उधर भाग रहे हैं। प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं कि सांप को कोई देखता है तो भागने लगता है, क्योंकि तत्काल मारेगा तो मर जाऊंगे। तो ऐसे काल सर्प से सभी भयभीत होके भाग रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? लोकान, कोई कहता है स्वर्ग लोक में जाऊंगा तो बच जाऊंगा, कोई कहेगा कि मैं चंद्र लोक में जाऊंगा बच जाऊंगा, लेकिन कहीं भी जाए नहीं बच पाएगा। लोकान सर्वान, किसी भी लोक में जाए निर्भयम, निर्भय नहीं हो सकता, न अधिगच्छेत, कभी नहीं निर्भय हो सकता, कहीं भी जाए काल का प्रभाव है, तो कैसे काल से बचेंगे? कोई साधन है? तब कहते हैं त्वत्पाद अबजम, आपके चरण कमल प्राप्य, जिसने प्राप्त किए, जिसने आपने आपके चरण कमलों का शरण लिया, यदरिच्छया, इसका मतलब आपके और आपके शुद्ध भक्त की कृपा से। इसका मतलब भगवान के चरणों का शरण कैसे मिलता है? भगवान के भक्तों का संग होता है, और भगवान के भक्तों का संग कैसे होता है? भगवान की कृपा से। तो भगवान जब आपकी कृपा से आपके शुद्ध भक्तों का संग होगा, गुरुजनों का आश्रय मिलेगा, गुरु कृपा कृष्ण कृपा प्राप्त होगी, अद्य उसी समय स्वस्थ, तब उसकी सारी स्वस्थ, वो अपने आप में स्थित हो जाएगा, उसका मानसिक भय काल का समाप्त हो जाएगा, सेते निर्भय होके सो जाएगा, मृत्यु अस्मात् उपायति, वहां से मृत्यु भाग जाएगा, उसका मृत्यु कुछ नहीं बिगाड़ेगा। तो इस श्लोक में सब मृत्यु के भय से कहीं भी किसी लोक में भागे तो निर्भय नहीं हो सकते, परंतु आपके परम भक्त भागवत किसी गुरुवर की कृपा और आपकी कृपा से आपके चरणों का शरण मिला जाए, तो संसार के भय के बीच में निर्भय होके बिना किसी मानसिक और शारीरिक चिंता के निर्भय होके सो सकता है। काल रूपी सर्प, कोई भी इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु जरा व्याधि के व्याल रूपी काल के प्रभाव से बच नहीं सकता है, चाहे किसी भी लोक में जाए। अब भगवान आप प्रकट हो गए हैं, अभी तो स्वयं काल भयभीत होके भाग रहा है, और जिन जीवों ने आपका चरण कमलों का शरण लिया है आपकी कृपा से, वो निर्भय होके निश्चिंत होके मानसिक शांति के साथ सो रहे हैं। प्रभुपाद कहते हैं बहुत प्रकार के जीव हैं, परंतु सारे ही मृत्यु से या काल से भयभीत हैं। ये जो कर्मी है, प्रभुपाद जी बहुत प्रकार के जीव हैं, इसका अर्थ है ज्ञानी कर्मी, इसकी बात कर रहे हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं कर्मी जो है वो बहुत बड़े यज्ञ आदि करके सोचते हैं कि हम स्वर्ग आदि में जाएंगे, वहाँ अधिक सुख है, सुविधा है, लंबी आयु मिलेगी और भोग करेंगे तो वहां जाते हैं। परंतु भगवत गीता से हम जानते हैं कि कहीं ब्रह्मा के लोक तक भी कोई चला जाए, और जहां हजारों युगों तक ब्रह्मा जी का एक दिन है और 43 लाख वर्षों तक है, और ऐसा ब्रह्मा जी की इतनी बड़ी रात है, और ऐसे ब्रह्मा जी का महीना और साल है, तो कितने कोटि कोटि द्वि प्रारब्ध काल जो है उसके बाद तो ब्रह्मा जी का भी शरीर छूट जाएगा। वैदिक शास्त्र के आधार पे जो ऊपर के लोकों में रहते हैं, जहाँ 10,000 साल तक जीते हैं, जैसे ब्रह्मा का एक दिन जो है 4,30,000,000,000 का है, हमारे 4,30,000,000,000 साल ब्रह्मा जी का एक दिन है, ऐसे हमारे 6 महीने देवताओं का एक दिन है। तो कर्मी वहां जाएंगे तो थोड़ा ज्यादा देर जिएंगे, परंतु भगवत गीता में तो लिखा है आ ब्रह्मभुवना लोका मृत्युलोकम, वापस आना पड़ेगा, जाए ब्रह्मा के लोक में जाए तो भी वापस आना पड़ेगा, बलंबी कितनी भी जीवन मिले तो भी वापस आना पड़ेगा, क्योंकि ये सब काल चक्कर से चलता है। भूतवा भूतवा प्रलियते, परंतु कोई भगवत धाम चला जाए यद गतवान निवर्तनते, तो फिर वापस भौतिक जगत में और काल के चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए जिन भक्तों ने भगवान के चरण कमलों का शरण ले लिया है, वो निश्चिंत होके शांतिपूर्वक भगवान विश्वास देते हैं कि भगवान के धाम में जाएंगे। जैसे भगवान ने कहा त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्मना इति मामे इति सो अर्जुन, वो फिर वापस अर्जुन इस भौतिक जगत में नहीं आएगा। जीव अपने स्वभाव से सनातन है, नित्य है, शाश्वत है, अमर है, अजर है, न हन्यते हन्यमाने शरीरे नित्य शाश्वतो अयम पुराणो। शरीर बदल चेतन महाप्रभु ने इसलिए कहा ब्रह्मांड भ्रमित कोई भागीबान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीच। जगत ब्रह्मांड में कई जीव बिचारे भ्रमण कर रहे हैं, जन्म जन्म के चक्कर में घूम रहे हैं, परंतु कोई बहुत बड़ा भाग्यशाली है तो कृष्ण भावना के संपर्क में आता है, उसके लिए कृष्ण की कृपा चाहिए और गुरुदेव का करुणा कृपा चाहिए, तब वो भक्ति के रास्ते को स्वीकार करता है। तो फिर निश्चित रूप से उसको आश्वासन दिया जाता है कि नित्य शाश्वत सनातन मृत्यु से परे जीवन को प्राप्त करेगा और निर्भय हो जाएगा। जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं इस धरती पे, तब सभी मृत्यु उसके भय से मुक्त हो जाते हैं। परंतु देवकी फिर भी कह रही है हमें कंस से भय लग रहा है, आप हमारे पुत्र के रूप में प्रकट हुए हैं। कहती फिर हमको भय क्यों हो रहा है, आप जैसे निर्भय का पुत्र के रूप में प्राप्त होना फिर भी हमारे अंदर भय रह जाए, इसलिए कृपा करके प्रार्थना कर रही है कि हमें और वसुदेव को निर्भय बना दीजिए। श्रील प्रभुपाद कहते हैं सारांश ये है, अब प्रभुपाद जी सारांश लिखते समय उनको याद आया कि चंद्रलोक भी स्वर्ग आदि लोकों के अंतर्गत आता है और वहां बहुत सुंदर सुखमय सोम रस पीकर और बहुत काल तक सुखमय जीवने का वर्णन वेदों में मिलता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं फिर ये जो अविज्ञानक कहते हैं हम चांद पे पहुंचे वापस क्यों आते हैं यहाँ दुखमय शरीर में, वहां संसार में वहां सुखपूर्वक क्यों नहीं रहते हैं, इसका अर्थ है वो चांद पे कभी पहुंचे ही नहीं है। और फिर प्रभुपाद जी कहते चांद में पहुंचना है तो उसके लिए पुण्य कर्म करना पड़ेगा, जहाज से नहीं जा सकते, और वहां जा भी जाए जाएंगे तो भी वापस आना ही पड़ेगा, इसलिए ये मूर्खता है। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं जो भगवान के चरणों का शरण लेता है वो निर्भय हो जाता है। और फिर माता जी कहती है जो शरण लेता है वो निर्भय होता है, तो उसका कहना क्या कहना जो आपको साक्षात आमने सामने दर्शन कर रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, उनकी क्या महिमा कहनी चाहिए। चाहे कोई ब्रह्म संसार में लोक लोकांतर में भ्रमण करे कभी निर्भय नहीं हो सकता, भक्ति केवल कृपा से प्राप्त होती है यदृच्छा। और आपके चरण कमल अभजम है, धनवंतरी है, ये जो औषधियों का राजा है, जैसे औषधि कोई लेगा तो स्वस्थ हो जाएगा, अबज का अर्थ, अबज का एक अर्थ है धनवंतरी, एक अबज का अर्थ है कमल, एक अबज का अर्थ है शंख, एक अबज का अर्थ है चंद्रमा, और भगवान इन सब का आदि है। मैं आपकी भक्त हूं, मुझे आपने अपनी माता के रूप में स्वीकार किया है, ये सम्मान दिया है, फिर भी मैं कंस से भयभीत क्यों हूं, ये देवकी का भाव है। श्री जीव गोस्वामी लिखते हैं भगवान आपके चरण कमलों का शरण लेने से निर्भय हो जाता है जीव, और जो निर्भय होगा वो सुखी हो जाएगा, भय चला गया तो दुख चला गया तो सुख मिल जाएगा, ये है इस श्लोक का भाव। जो मृत्यु संसार में आया है वो मृत्यु से बच नहीं सकता, तो भय से मुक्त कैसे होगा। आप सबसे श्रेष्ठ हो, आद्य हो, आप काल के नियंता हो, काल आपके अधीन है, आपके चरण कमलों का शरण लेंगे तभी स्वस्थ हो जाएंगे, निर्भय हो जाएंगे, शेते का मतलब शांत हो जाएंगे, और मृत्यु भाग जाएगा। मृत्यु का भय भाग जाएगा ऐसे भक्त, और भक्त शांत सो जाएगा। भगवान के चरणों का वर्णन करके भगवान परम लक्ष्य ये बताया गया है, और उसके केवल प्रभाव से भय भाग जाता है। एक और इसका अर्थ है, आज अर्थ ये, आज आप प्रकट हुए हैं भगवान तो सभी निर्भय हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, और इसको वर्तमान काल में कहा गया है कि अभी होने वाला है, क्योंकि काल और मृत्यु भाग जाएगा आपसे। यह यहां देवकी माता कह रही है भगवान श्री कृष्ण परब्रह्म है, परब्रह्म है, और माता के वचनों से वो निर्भयता की बात कह रही है, क्योंकि भगवान प्रलय के उपरांत भी बचते हैं, तो वो काल के स्वामी हैं। और जो आपका शरण लेते हैं उनके काल को आप समाप्त कर देते हैं। जीव गोस्वामी लिखते हैं, इससे इतना तो स्पष्ट होता है कि माता देव की कोई निराकार की प्रार्थना नहीं कर रही है। वो तो साक्षात भगवान काल के अधिपति श्री कृष्ण की प्रार्थना कर रही है। 28वां श्लोक पढ़ते हैं। सत्वं घोराद उग्रसेनात्मजानस त्राहि त्रस्तं भृत्यः वित्रासहासी रूपं चेदं पौरुषं ध्यानधिष्ण्यं मा प्रत्यक्षं मांसस दृशां कृषिष्ठाः। स हे परम पुरुष भगवान, आप त्वम आप घोरात इस बड़े घोर भयानक उग्रसेन आत्मजा उग्रसेन के पुत्र कंस न हमको त्राही हमारी रक्षा करो। अब सीधी बात कह रही है, ये लिखा था चार श्लोकों में प्रार्थना करके भगवान को प्रसन्न करके फिर अपना मनोरथ रखेगी। त्राई त्रसान भृत्य मित्सार हासी, हे नाथ इस भयानक दुष्ट कसाई कालनेमी उग्रसेन के पुत्र के रूप में प्रकट कंस से हमारी रक्षा कीजिए। क्या हो गया माता आपको? त्रस्तान त्रस्तान, हम बहुत बड़े भयभीत हैं इस कंस से। भृत्या वित्रास हा असी, आपका जो सेवक है भृत्य है सेवक है, उसको विशेष त्रास से आप मुक्त कर देते हैं, उसको कोई भय नहीं रहता है। हम जानती हैं हम आपके सेवक हैं। रूपम चैदम पौरुषम ध्यान धिषण्यम, इस आपके चतुर्भुज रूप में जो आप प्रकट हुए हैं विष्णु के रूप में, पौरुषम आप परम पुरुष भगवान है, ध्यान धिष्ण्यम इसी का ध्यान करना चाहिए, ध्यान से ही इसका अनुभव किया जा सकता है। मां नहीं प्रत्यक्षम, प्रत्यक्ष रूप से साक्षात नहीं नजर आओ, मांस दृश्यम भौतिक जन की आंखें उनको मत दिखाई दीजिए, कृषिष्ठाः ऐसे आप कृपा कीजिए। मेरे नाथ हे भगवान, आप अपने सेवकों को भय से मुक्त करने वाले हैं, निर्भय करने वाले हैं, मैं आपको प्रार्थना कर रही हूं, आप हमको आप हमारे को रक्षा हमारी रक्षा कीजिए इस भयानक उग्रसेन के पुत्र के कंस के भय से, हमको मुक्त कीजिए। आपका ये विष्णु रूप योगी ध्यान में जिसका अनुभव करते हैं इसको अब अदृश्य कर दीजिए, क्योंकि ये भौतिकवादियों के देखने के लिए नहीं है। इस श्लोक के ऊपर कल चर्चा कृष्ण कृपा से करेंगे, अब यहां वाणी को विराम देते हैं आज की। आपका कोई प्रश्न जिज्ञासा है? मैं समझता हूं कुछ ही श्लोक होंगे माता जी की प्रार्थना के, कल पूरा हो जाएगा। श्रील प्रभुपाद की जय। कोई प्रश्न है किसी का? मैं समझता हूँ नहीं होगा, क्योंकि ये सारे सिद्धांत के प्रार्थना है।